الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم یہ کتاب ہے خطبات عارفی حضرت شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری جمعے کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، نورانی تاثیر رکھی ہے، ایمانی تاثیر رکھی ہے، ایقانی تاثیر رکھی ہے، احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم تو اس طلب کو لے کے بیٹھیں کہ ہمارے دل بن جائیں، سمر جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی علائشوں سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک، ماحول کے اندر جو مادی اور گندی فضائیں چل رہی ہیں ان کی علائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، یہ کریم بن جاتا ہے، یہ دل میں علائشیں ڈالتا رہتا ہے، اس کی علائشوں سے پاک. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے. ہمارے دل اللہ پاک کی محبت سے معمور ہوں گے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے، اللہ کے اطاعت کا شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے، اللہ کے نافرمانی سے میں روکنے والے بنیں گے. دل کا اصلی کام تو یہ ہے. انشاءاللہ اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائیں گے. ان اللہ والوں کا مقصود بھی یہی رہا، یہ ارشادات بھی ان کے لیے ہیں جو حضرت کی خدمت میں اسی طلب کو لے کر آتے تھے، اس لیے ان میں اثر ہے. یہ ایک مجلس ہے تشویشات اور بیماریوں کا حل، یہ عنوان تو بعد میں دیا جاتا رہا جائے نا. یہ مجلس جمعہ 5 ذی القعدہ 1404 ہجری میں یعنی 13 اگست 1984 میں ہوئی تھی. فرماتے ہیں، اچھا یہ تو ہم نے پڑھ لیا، میں اگلی کرتے ہیں، صرف دوبارہ یہ آگے آ گئی ہے. اس میں سے کچھ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. کل ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ صاحب ہم بہت پریشان ہیں، ایک تعویذ دیجیے یا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. ہم نے کہا یہ سب چیزیں ہم نہیں جانتے، یہ سب فضولیات ہیں، لقبیات ہیں، لوگ خام خواہ وقت ضائع کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو حدیث میں بھی ہے. یہ ہم کچھ سطریں پھر دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، بار بار پڑھنے والی چیزیں ہیں. اعمال قرآنی میں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے اعمال لکھے ہیں کہ سبھی بیکار ہیں. میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں وظیفے بتائے ہیں، اورات بتائے ہیں، اور اسماء الہی بتائے ہیں، وہاں وہ سب دفع مضرت کے لیے ہیں، کہیں سے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا، کہیں اپنی جان و مال کا اندیشہ ہو تو اللہ کے کلام میں سے ان سے حفاظت ہے. اس طرح نہیں کہ اللہ کے کلام یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام یا بزرگوں کے بتائے وظیفوں کو جہاں چاہو استعمال کر لو، خواہ وہ مقصد جائز ہو یا ناجائز. یاد رکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وظائف و اورات جو ہیں، ان کو اگر تم نے غلط استعمال کیا تو اس کا وبال خود تم پر پڑے گا. اس لیے کہ تم نے اسماء الہی کی امداد کی اور وظائف کی بھی حرمتی کر رہے ہو، اس کا وبال کسی غصے پر تو کیا ہوتا، تم خود اس میں مبتلا ہو جاؤ گے. ان کو مشغلہ نہیں بنانا چاہیے. کیا یہ گستاخی نہیں کہ نہ فسق حضور کی باتیں چھوڑو اور نہ گناہوں کی باتیں چھوڑو؟ और नापाकियों में आलूदा रहो, फिर जब कोई बीमारी हो जाए या मुसीबत पड़ जाए तो अल्लाह का कलाम पेश करो। कितनी बड़ी गुस्ताखी की बात है, कितनी बड़ी बेअदबी है। खबरदार भाई, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। आज तो इसी पर इक्तफा करता हूँ, आइंदा अगर अल्लाह ताला मुझे सेहत और कुव्वत दी और तौफीक बख्शी तो तफसील से अर्ज करूँगा। बार बार बताते बताते अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कीमिया के नुस्खे, असीर के नुस्खे आपके सामने पेश कर दिए, इस किताबी सूरत में भी आ गए। मैंने अपना हक अदा कर दिया है, अल्लाह ताला इसको शर्फ कबूलियत अता फरमाए और हम लोगों को सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत का फरमाने का मकसूद ये है, आज भी यही हाल है, हम अपनी तर्ज जिंदगी को बदलना नहीं चाहते। जिन गंदगियों के अंदर गलत कदर फंसे हैं उनको छोड़ना नहीं चाहते, फिर इनकी नहुसत से जो हम पर हालात आ रहे हैं उसके अजाले के लिए फिर आम लोग के पास जाते हैं, फिर उनसे ताबीज मांगते हैं, उनसे वजीफे मांगते हैं। तो इशारा ये फरमा रहे हैं कि जब तक बदअमली नहीं छोड़ेंगे, गुनाहों को छोड़ेंगे, गलाजतों से पाकी हासिल नहीं करेंगे, उस वक्त इन वजीफों को फायदा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के कलाम को गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह हमें भी समझ अता फरमा दे। ये ना समझिएगा, फरमाते हैं ये ना समझिएगा चीज मुख्तसर सी है और रात वज़ायफ मुख्तसर से हैं, ये कीमिया के नुस्खे हैं, बड़े इकसीर के नुस्खे हैं, इनके अंदर बड़ी तासीर है। अल्लाह के लिए इन्हीं तक महदूद रखो, इसमें इसमें इसी में आफियत है। आगे वजीफों में बढ़ोगे तो अंदेशा है कि वहां जरा सी बात हुई फौरन कुरान खानी करा ली, ये भी काम है। कुरान खानी के लिए बच्चों को बुला लिया मदरसे से, ये नहीं देखते कि अल्लाह का कलाम खत्म कराते हो जिसमें ना नियत ना खलूस, बल्कि मैं दुनियावी मकासद के लिए और दुनियावी अगराज के लिए खत्म होता है। डरो कहीं ऐसा ना कि अल्लाह के कलाम का वेट तुम पर वबाल बन जाए गैर शरई मौकों पर इस्तेमाल की वजह से। हमारे छोटे भाई ने बताया कुछ तो साल हो गया उनका, एक अस्पताल के अंदर मरीज नहीं आ रहे, मरीज नहीं आ रहे, कमरे सारे खाली पड़े हुए उनके। तो जनाब बना लिए उन्होंने मदरसे तालब इलम कुरान खानी के लिए, क्यों जी हैं? कैसे मैंने हाफिज साहब से कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, किस मकसद के लिए आए हो? ना आने वालों ने सोचा ना बुलाने वालों ने सोचा, क्या चाह रहे हैं? मरीज आए ना, लोग बीमार हो ना, इसको नहीं सोचते किस मौके पर लाया जा रहा है। बल्कि अल्लाह माफ में बाज का साफ साफ मालूम हो रहा है इस दुकान के ऊपर सही चीजें नहीं फरोख्त होंगी, कुरान खानी हो रही है, कारोबार के लिए हो रही है, ये काम बन गया ना, इसी को फरमा रहे कि जरा सी बात हुई फौरन कुरान खानी करा ली। ये नहीं देखते कि अल्लाह के कलाम का खत्म कराते हो जिसमें ना नियत ना खलूस, बल्कि मैं दुनियावी मकासद के लिए और दुनियावी अगराज के लिए खत्म होता है। डरो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के कलाम का विर तुम पर वबाल बन जाए, क्यों? गैर शरई मौकों पर इस्तेमाल की वजह से। इसमें कोई शक नहीं कि आयत करीमा के खत्म में बड़ी तासीर है, इसमें कोई शक नहीं कि आयत करीमा के खत्म में बड़ी तासीर है, लेकिन जायज और नजायज मकासद के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। गुठलियां जमा हो जाती है ना, बोरी में भर के ले आते हैं ना 1.25 लाख दफा, अब जायज मकसद के लिए नजायज ये नहीं कोई पूछता। इससे डरने की जरूरत है, चाहे दुनिया भर के अमलियात कर लो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कलाम को मशगला ना बनाओ, یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ ادب و احترام کے خلاف ہے، ہمیشہ اس سے بچو، کسی جائز مقصد کے لیے نفس کی قید سے بچنے کے لیے، شیطان کے مکر سے بچنے کے لیے، ایسے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے جو خام خواہ در پہ آگاہ رہتے ہیں استعمال کرنے کے لیے یہ شرط ہے کسی بزرگ سے اجازت بھی لے لو. ناجائز کام کے لیے تو بالکل اجازت نہیں، غیر شرعی کاموں کے لیے بالکل اجازت نہیں ہے، اگر کسی جائز مقصد کے لیے یعنی اپنے نفس کی قید سے بچنے کے لیے، شیطان کے مکر سے بچنے کے لیے، اور ایسے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے جو خام خواہ در پہ آزار رہتے ہیں استعمال کرنے کے لیے شرط ہے کسی بزرگ سے اجازت لے لو، خود استعمال نہ کرو. اس لیے کہ خدا معلوم کس طرح استعمال کرو گے. یہ تمام وظائف اور اوراد ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک اپنے کسی بزرگ سے ان کی اجازت نہ لے لو مفید ثابت نہیں ہوتے، اور ایسے ہی ایرے غیرے کی اجازت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. ایرے غیرے کی اجازت کا اعتبار نہیں، کسی ادلا والے سے پوچھو وہ صحیح طریقہ بتا دے گا، استعمال کا صحیح طریقہ بتا دے گا، اور غرض کو سمجھ لے گا کہ یہ کون سی غرض ہے، غیر شرعی تو نہیں ہے. اس لیے فرما رہے ہیں اس کے تعلق سے، کسی عالم صاحب نے ایک اچھے خاصے برسر روزگار جوان کو رات کے پڑھنے کا وظیفہ عمل بتا دیا کہ کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر اتنی دفعہ چیز پڑھو، اس سے وظیفہ پڑھا، نتیجہ یہ ہوا کہ دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا، جو ملازمت تھی وہ بھی جاتی رہی. آئزہ جو حواس باغتا پھرتے ہیں، آج کل ڈاکٹر کا علاج ہو رہا ہے، کبھی ہسپتال جا رہے ہیں، بتانے والے ایسے بیوقوف ہیں وہ نہیں دیکھتے کس مقصد کے لیے بتا رہے ہیں، بس کہہ دیا یہ دو گھنٹے کا عمل ہے، 3 بجے رات کو آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر پڑھو. غرض مند آدمی کیا نہیں کرتا، سب کچھ کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ بیچارے کا دماغ خراب ہو گیا. اللہ کے کلام سے نہیں ہوا یہ بات، ذہن نشین کر لو. اللہ کا نام کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. بسم اللہ الذی لا یضر، اللہ کا نام جو ہے نا یہ کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ کے نام کے ساتھ زمین آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ غرض غلط ہے، غلط کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں اللہ کے نام، تو اللہ کے نام سے نقصان نہیں ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں کسی اللہ والے سے پوچھ لو. جو نماز روزے تھے وہ بھی اس کے چھوٹ گئے، ایک وہ جو واقعہ بتا رہے ہیں، بیچارے کا دماغ خراب ہو گیا، نماز روزے بھی چھوٹ گئے. خبردار، میں آپ سے کہتا ہوں عملیات کے پھیر میں ہرگز نہ پڑنا، عملیات کے پھیر میں بالکل نہ پڑنا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اللہ تعالی محفوظ رکھے. میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ آج کل جو کچھ بھی بیماری پریشانیاں ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، ایسی بیماریاں کہ ڈاکٹروں کی عقل تک حیران ہے کیا تشخیص کریں. یہ بات کچھ سال پہلے کی ہے، اس وقت کرونا کا نام و نشان بھی نہیں تھا، ڈینگی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. اس وقت فرما رہے ہیں کہ جتنی بیماریاں ہیں ایسی ہیں کہ ڈاکٹروں کی عقلیں تک حیران ہیں کیا تشخیص کریں. دنیا بھر کے ڈاکٹر حیران اور پریشان پھرتے ہیں، ادھر ادھر سر مارتے پھرتے ہیں، ایکس رے کرو، خون لے جاؤ، پیشاب لے جاؤ، یہ کرو وہ کرو، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مرض کیا ہے، علاج کیسے کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض امراض کا سبب کوئی اور بد پرہیزی ہے لیکن اس پر نظر نہیں جاتی. اللہ کا قانون ہے جو کبھی نہیں بدلے گا کہ تم جو گناہ کبیرہ کرتے ہو اس کے وبال میں بیماریاں جو ظاہر ہو رہی ہیں اور پیدا ہوں گی. آج جو کینسر پیدا ہو رہے ہیں، دوسری بیماریاں جو ظاہر ہو رہی ہیں، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں جن سے ہم نے توبہ نہیں کی، اب یہ بصورت قہر ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں. इनका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। कह रहे खुदावंदी का आखिर क्या इलाज हो सकता है, आज तक साइंस आजीज है, कैंसर के इलाज में कामयाबी नहीं की। क्यों, क्या बात है? इसलिए कि गुनाह कबीरा कर रहे हैं और ऐसे शदीद गुनाह कबीरा जिसे तौबा भी नहीं करते। इसकी एक मिसाल यह है कि गीबत करना ऐसा है जैसे मुर्दार भाई का गोश्त खाना। तो मुर्दार भाई का जो गोश्त खाएगा तो क्या होगा, क्या जहर पैदा नहीं होगा? फोड़े हो, फुंसी हो, तमाम बदन गल जाए, बजा है क्योंकि इसमें जहर है और खुला हुआ जहर है। अल्लाह ताला मिसाल दे के बतलाया है ये ऐसा जैसे मुर्दार भाई का गोश्त। अल्लाह से मांगे अल्लाह हमें भी समझ अता फरमा दे हैं, और इस गीबत से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे और बचने की तौफीक अता फरमा दे। हमारी मजलसों में ये आम हो गया है, जबान को इसका चस्का लग गया है, ध्यान भी नहीं जाता। क्या कहते हैं, वाकया बयान कर रहा हूं। साहबा ने पूछा था रजी अल्लाह ताला ने हुजरत अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अगर वाकई मौजूद हो उसमें सुना यही तो गीबत है, मौजूद नहीं बयान करे तो बोहतान है और ज्यादा बुरी बात है। तो गीबत तो वाकई यही है। गीबत जो मुर्दार गोश्त खाने से होती इसकी तासीर वैसे ही है, वो जहरीलापन है। गीबत की 500 दफा हम लोग गीबत करते हैं, कभी तौबा करते हैं, औरतें भी करती हैं, मर्द भी करते हैं, एक रवाज है, एक रस्म है, कभी तौबा की तौफीक नहीं होती। अल्लाह ताला के यहां तो अमल और रद्द अमल मुकर्रर है। क्या तुम्हारी रस्म और रवाज में आ जाने से और तमाम इब्तला की वजह से अपना कानून बदल देंगे? अल्लाह ने अपना कानून नहीं बदलना। क्या तुम्हारी गुफ्तगू के अंदर आ जाने से गीबत की तासीर बदल जाएगी? यह रवाज हो गया, आम होगी बात, तो तासीर बदल जाएगी? नहीं बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी। तो बहुत से अमराज जो आजकल पैदा हो रहे हैं वो इन गुनाह कबीरा का नतीजा है जिनका हमने इर्तकाब किया है, इनसे तौबा भी नहीं की। जबकि अल्लाह ताला की शान करीम ये है कि तुम्हारे से चाहे जितना गुनाह कबीरा का सदूर हो जाए, अगर तुमने तौबा इस्तफा कर लिया और इस गुनाह को छोड़ दिया, ये याद रखें, जबान से तौबा, लब पे तौबा, दिल पुर अज लज्जत गुनाह, इस तौबा पर शैतान भी शर्मा जाए कि तौबा इस्तफार कर लिया अगर और गुनाह को छोड़ दिया तो सारा जहरीलापन खत्म हो जाएगा। तौबा इस्तफार कर लिया, गुनाह को छोड़ दिया तो सारा जहरीलापन खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला का रहम है, उनका करम है, उनका वादा है, जिसने तौबा इस्तफार किया और गुनाह को छोड़ दिया तो जो रद्द अमल गुनाह का होना था, खा बीमारी हो, परेशानी हो, सबका रद्द है। तौबा तो नसू यानी सच्चे दिल की तौबा इस्तफार से तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। आंख बहकी, जबान बहकी, दिल बहका, गुनाह कबीरा का इर्तकाब हुआ। तौबा की कहां की, किस वक्त की? जब इसका खमियाजा भुगतने का वक्त आया है तो दौड़े वजीफी की तरफ, चिल्लाने लगे कि किसने जादू कर दिया। अरे किसने जादू नहीं किया, बल्कि तुमने खुद अपने आप में जहरीलापन पैदा कर लिया है। अरे किसने जादू नहीं किया, बल्कि तुमने खुद अपने आप में जहरीलापन पैदा कर लिया है। तुम्हारी रूह के अंदर और जिस्म के अंदर जहरीलापन सरायत कर गया है। गुनाह कबीरा की अब हजार इलाज करो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जब मर्ज होगा इसी के मुताबिक इलाज जरूरी है। अगर खाना खाने से बदहजमी पैदा हो गई या किसी बद एहतियाती और बद परहेजी से मलेरिया हो गया, इलाज करो ठीक हो जाएगा। इसी तरह जितने अमराद जिस्मानी हैं वो सब मादी हैं, बे एहतियातियों से और बद परहेजियों से पैदा होते हैं, लेकिन जो रूहानी बद परहेजियों से अमराद पैदा होते हैं उनके इलाज, उनका इलाज मादी इलाज से हो सकता है। हजार इलाज कर लो, यानी जो रूहानी बद परियों से मराद पैदा होते हैं, क्या उनका इलाज हो सकता है? मादी इलाज हो सकता है? हरगिज। हजार इलाज करके देख लो, हजारों डॉक्टर मिलकर तशीस करके देख रहे हैं, एक्सरे लो, दुनिया भर की कोशिश कर लो, लेकिन वो रद्द अमल होकर रहेगा। अल्लाह हमें समझ अता फरमा दे, अल्लाह हमें सच्ची पक्की तौबा करते रहने की तौफीक अता फरमा दे। इसके लिए अपने दिल के अंदर ये सलाहियत पैदा करनी है, अपने दिल के अंदर ये कुव्वत हासिल करनी है कि ये मनफी जज्बात जो हमारे दिल में उभर कर हमें दबा देते हैं, हम इसमें ऐसे महव हो जाते हैं कि एहसास भी खत्म हो जाता है। जब गुनाह में रंगा जाता है, आदत पुख्ता हो जाती है, उस वक्त एहसास भी खत्म हो जाता है। अल्लाह की पनाह है, इसलिए कि दिल के अंदर इस एहसास की बेदारी के लिए अब बहुत से गुनाह ऐसे राइज हो गए हैं जिनको आज गुनाह ही नहीं समझते, आदतन करते रहते हैं, ख्याल भी नहीं जाता ये गुनाह है। जैसे गइबत का जिक्र किया, बदनिगाही का जिक्र है, ख्याल भी नहीं जाता। टीवी पर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, नजर पड़ रही है घर बहरों के ऊपर, ख्याल भी नहीं जा रहा कभी, तो यह भी तो गुनाह है। तो ये दिल के अंदर जो है सलाहियत पैदा हो जाए कि दिल हमारा रहनुमा बन जाए, ये हमें रोके, गलत काम से रोके। जिनके दिलों के अंदर शफाफत आ जाती है, लताफत आ जाती है, पाकीजगी आ जाती है, दिल की सलाहियत दुरुस्त हो जाती है, तो गुनाह की तरफ इल्तफात भी नहीं होता। और गलती से हो जाए तो जब तक तौबा करके साफ न करा ले इसको शैल नहीं आता। आज जुम्मा है ना, सबने धुले हुए कपड़े पहने हैं, साफ सुथरे हैं। साफ सुथरा कपड़ा जब होता है, एक हल्का सा भी दाग लग जाए तो खटकता है, एक नुक्ता भी लग जाए ना, क्या तवज्जो को खींचता है कि भी साफ कर लो इसको। देखने वाला भी कह देता है देखो तुम्हारे दाग लग गया, और जो कपड़ा मैला हो, मैकेनिक का कपड़ा जो गाड़ियों के नीचे घुस के काम करते हैं, क्या हाल होता है उसका, उस पर और दाग लग जाए कभी ध्यान जाएगा? भाई हमारा हाल यही है, हमने अपने दिल को ऐसा मैला कर लिया है कि खलश नहीं होती, गलती की खलश नहीं होती, गुनाह की तरफ इल्तफात नहीं होता, और धब्बे लगते चले जाते हैं। अगर दिल को साफ कर लेंगे है, तो फिर एक हल्की सी भी, हल्का सा भी दाग आएगा, हल्की सी नाफरमानी होगी, दिल के अंदर ऐसा इस्तराब आएगा, ऐसी परेशानी आएगी, जब तक तौबा करके माफ ना करा ले उस वक्त तक जो है चैन नहीं आता। तो इसी दिल को ये बनाने के लिए, ये तसव्वुफ इसी सफाई का नाम है, ये तस्किया इसी का नाम है, दिल का तस्फिया इसी का नाम है कि एक दफा इसको हिम्मत करके मेहनत करके साफ कर ले, फिर ये हमारा रहनुमा बन जाएगा, फिर इसके अंदर बेचैनी पैदा होगी, इसमें खटक होगी है, ये फिर हमें रोकेगा। और अगर हो गई है तो जैसे एक धब्बा लग गया है, एक ही धब्बा लगा है और वो खटक रहा है, जब तक उसको तौबा से माफ ना करा ले चैन नहीं आता। अल्लाह से मांगे, अल्लाह हमारे भी इस सही शऊर को फैदार फरमा दे। आज तसव्वुफ कोई बिगाड़ के रख दिया है, चंद रस्में है, चंद वज़ाइफ, इन्हीं में मस्त हो गए या कैफियात पे मस्त हो गए? कैफियात जो है, जो अच्छी हैं, वो तो अल्लाह पाक अपने नाम की बरकत से अता फरमाते हैं। मकसूद ये शफाफत है, ये लताफत है, ये पाकीजगी है कि दिल में अंदर खटक पैदा हो कि गलत काम हो गया इसको साफ करा लो। इसीलिए हमारे हजरत फरमाते थे कि तसव्वुफ का जो निचोड़ है इससे मकसूद किया है कि अवामर को रिल्ला करना, नवाही को रिल्ला छोड़ना, जो हुक्म करने वाले हैं अल्लाह के लिए करने वाले बन जाए, है, और जो नहीं करने वाले छोड़ने वाले बन जाए। तो इसके लिए एक तरीका जिक्र का ये भी है जिसकी हमारे यहां मशक की जाती है, जिक्र खफी जिक्र कल्बी, दिल के अंदर अल्लाह को याद करना। तो इसका मुश्किल हुक्म भी है, वस्को रब्बा का फी नफ्से का तदर्रुम व खीफतन व दून और जहर मिन अल कौल बिल गुदुब वल असाली वला तकुम मिन अल गाफिलीन, फरमाया जा रहा जिसका मफहूम है अपने रब को अपने जी में याद करो, यानी अपने दिल के अंदर आजिजी के साथ पुकारे बगैर। सुबह भी याद करो, शाम भी याद करो, नहीं कसरत से याद करो, और गाफिलीन में से ना हो। तो दिल को गफलत से बेदार करने का कुरान एक इलाज यह भी बता रहा है, इस दिल में जो है चुपके चुपके अल्लाह की याद को बसा लो। अल्लाह फरमाते हैं फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, जब तुम मुझे याद करोगे मैं भी तुम्हें याद रखूंगा। हम अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह हमें याद रखेंगे। हमारा याद करना अल्लाह के नाम के साथ है, दूसरी जगह सुना रहे हैं वज़कुर इस्मा रब्बी का व तबत्तल इलैही तब्तीला, रब को उसके इसम से याद करो, उसके नाम से याद करो और तबत्तल के साथ, यानी ये तासीर जो लेनी है दिल के अंदर, ये खलिश पैदा हो जाए दिल के अंदर, ये खटक लगे है दिल के अंदर, ये कुव्वत आ जाए कि जैसे नाफरमानी हो और ये हमें बेदार करे, ये हमें बेचैन कर दे, ये हमें मुस्तर कर दे, इस इस्तराब में फिर तौबा करके इसको हम साफ करा लें। इसके लिए हमें तबत्तुल के साथ मेहनत करनी है, कुछ वक्त तन्हाई में निकाल कर दिल पर अल्लाह के नाम को रचाने बसाने की मशक करनी है। तबारा कस्म रब्बी का, रब का इसम जो है बड़ा मुतबर्रक है, इस मुबारक नाम को दिल में रचाना बसाना है। इसके लिए एक तरीका ये है कि तसव्वुर से दिल पर लफ्ज अल्लाह, जो अल्लाह का ज़ाती नाम है, इसको लिखें या लिखा हुआ तसव्वुर करें, इसकी दिल में तकरार करें, अल्लाह 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 अल्लाह, ये जितनी तकरार करेंगे दिल में बरकत आएगी, तबर्रुक आएगा। वो तबर्रुक क्या है कि नेकियों की इस्तेदाद बढ़ेगी, गुनाहों को छोड़ने की हिम्मत बढ़ेगी। तो एक तसव्वुर की मशक है कि तसव्वुर से दिल पर लफ्ज लिखो अल्लाह, खुशनुमा रंग जिसको जो अच्छा लगे है, और तसव्वुर से यानी अपने इरादे से दिल के अंदर तकरार करें अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह से मांगे जो इससे मकसूद है, है दिल के अंदर है वो शफाफत, वो पाकीजगी, वो लताफत, वो कुव्वत हिम्मत अल्लाह हमें अता फरमा दे। अब थोड़ी देर के लिए इसकी मशक कर लें दिल पर। अल्लाह كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا إله إلا أنت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين يا الله ہم سب کی کامل اصلاح فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی سچی محبت سے سچی معرفت سے سچے تعلق سے یا اللہ حقیقی تقویٰ سے ہمارے دلوں کو مزین فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا کہ ہر گناہ کے ہر معصیت سے ہر قسم کے کفر سے شرک سے بدعت سے گمراہی سے ہمیں طبعی نفرت ہونے لگے یا اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين يا رب العالمين صلى الله تعالى خير خلقه محمد وآله أصحابه أجمعين برحمتك اللهم الرحمن